समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा आर्थिक और खेल जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुदिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। एंड द हीट लिसनर्स इज एट इट्स पीक, सो वी अर्ज ऑल आवर लिसनर्स टू टेक अटमोस्ट केयर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हीट, स्टे हाइड्रेटेड, वेयर शेड्स or wear your dark glasses, whatever, and protect yourselves from this extreme heat at all costs. Well, you're tuned to Parikrama 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Mudita. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Campaigning for seventh and last phase of Lok Sabha elections in full swing as only 2 days are left for canvassing.
Pradhanmantri aur Bhajpa ke varishth neta Narendra Modi ne kaha, sarkar ne 4 crore garibon ko pakke ghar aur 12 crore se adhik gharon mein nal se jal ki suvidha di hai.
Supreme Court rejects Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's plea seeking 7-day interim bail extension.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए।
आईएमडी सेज सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेलिंग ओवर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया टू रिड्यूस फ्रॉम टुमारो।
और फ्रेंच ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच सीधे सेटों में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में पहुंचे।
And now, Mudita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the International Day of UN Peacekeepers. Well, Mudita, the International Day of United Nations Peacekeepers, commemorated every year on the 29th of May, that is today, is an international day to honor the life of those who have lost their lives in the cause of peace, and to pay homage to all the people who have served and continue serving in United Nations peacekeeping operations for their utmost professionalism, dedication and courage. And the International Day of United Nations Peacekeepers on May 29th pays tribute to the unwavering commitment and sacrifices of uniformed personnel and civilians serving the organization's cause of peace. And the International Day of UN Peacekeepers was established by the UN General Assembly in 2002 to pay tributes to all men and women serving in peacekeeping and to honor the memory of those who have lost their lives in the cause of peace. In 1948, the historic decision was made to deploy military observers to the Middle East to supervise the implementation of Israel-Arab armistice agreements in what became the United Nations True Supervision Organization. And since that time, more than 2 million peacekeepers from 125 countries have since served in 71 operations around the world. And today, some 76,000 women and men are serving in 11 conflict zones across Africa, Asia, Europe, and the Middle East.
महासभा ने अपने प्रस्ताव में 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। 1948 में पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन स्थापित होने के बाद से हिंसा, दुर्घटनाओं और बीमारी के परिणामस्वरूप शांति की सेवा में 3900 सैन्य और पुलिसकर्मियों तथा नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा सदस्य राज्यों और गैर सरकारी संगठनों के साथ शहीद शांति सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
Well, let's talk a bit about the theme for the 2024 International Day of UN Peacekeepers, which is Fit for the Future, Building Better Together. The theme denotes that while UN peacekeeping has proven to be part of the solution for over 75 years, assisting host countries in navigating the difficult path from conflict to peace, the Secretary General's new Agenda for Peace Policy brief sets out a path for multilateral peace and security operations to remain viable tools and address future crises and conflict. And let me add a bit to the theme of this day. The theme, like we said, is Fit for the Future, Building Better Together. It encapsulates the spirit of progress and collective action towards creating a world that is more equitable, just, and sustainable for all. And today at the UN headquarters in New York, the Secretary General presides over the wreath-laying ceremony in honor of all peacekeepers who lost their lives while serving under the UN flag. In addition, the Dag Hammarskjöld Short Medal is awarded posthumously to peacekeepers who have fallen while serving in the cause of peace during the preceding year. And Indian Army Major Radhika Sen has been selected to receive the 2023 Military Gender Advocate of the Year Award. The award recognizes her advocacy for women and girls while serving as a peacekeeper. And congratulating her, UN Secretary General Antonio Guterres called her a true leader and role model. Her service was a true credit to the United Nations as a whole, he said. And the award recognizes the efforts of military peacekeepers in promoting the principles of the 2000 Security Council resolution that calls for protecting women and girls from conflict-related sexual violence and sets gender-related responsibilities for the UN.
जी हाँ अभिषेक, और हम भारतीयों के लिए भी गर्व का दिन है आज। भारतीय सेना में मेजर राधिका सेन ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अपनी सेवाएं दी थी, और जैसा कि आपने बताया कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस उन्हें यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। वो मेजर सुमन गवानी के बाद इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक हैं।
Yes, and of the 6,063 Indian personnel in UN peacekeeping operations, 1,954 serve with MONUSCO, 32 of them women. And UN peacekeeping operations use the day to strengthen bonds with the local populations that they have been deployed to serve. So to conclude our discussion today, Mudita, let's leave our listeners with the wise words of Dag Hammarskjöld, who said, "The UN wasn't created to take mankind into paradise, but rather to save humanity from hell." So on that note, we salute all those brave hearts who continue working unceasingly for world peace and for their role in keeping the world safe.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास। किन्नर भारतीय समाज व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। घर में खुशियों के अवसर पर बधाइयां देने आने वाले इन किन्नरों के घर में भी खुशियां आएं, ऐसी एक पहल बीड जिले में की जा रही है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
किन्नरों को आए दिन ट्रेन में या फिर ट्रैफिक सिग्नल पर पैसे मांगते हुए देखा जा सकता है। समाज व्यवस्था में रोजगार के अवसर न मिलने से इन्हें मजबूरन भीख मांगनी पड़ती है। लोग भी इनसे छुटकारा पाने के लिए 10-20 रुपए का नोट पकड़ाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन बीड़ के दीनदयाल शोध संस्थान ने ऐसी पहल की है जिससे आने वाले दिनों में बीड़ की सड़कों पर किन्नर पैसे मांगते हुए नहीं दिखेंगे। यह संस्थान किन्नरों को जूट और कपड़े से बैग बनाने का प्रशिक्षण मुफ्त दे रहा है। मराठवाड़ा संभाग में इस प्रकार का यह पहला ही प्रयास है। संस्थान के संचालक गंगाधर देशमुख ने बताया कि अब तक 5 किन्नरों को ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अभी 20 किन्नरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
इस साल जून महीने में बीड शहर में 20 तृतीय पंक्तियों को टेलरिंग का 3 माह का प्रशिक्षण देकर उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए जेएसएस का काम अभी चालू है। बीड शहर में उनका रजई तैयार करने का एक यूनिट हम शुरू करने वाले हैं। आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं।
वास्तव में दीनदयाल शोध संस्थान की इस पहल से किन्नर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। परिक्रमा के लिए बीड से रवि उबाड़े के साथ हर्षवर्धन दीक्षित, छत्रपति संभाजी नगर।
A massive clean-up campaign for gorges and rivers in Aizawl, initiated by a group of volunteers, Save the Riparians has kicked off in Aizawl with positive response. The group, backed by NSS volunteers, state departments and other NGOs, cleaned up garbage and constructed garbage traps at the drains along the Thlong River, which is a source of river flowing into the city's main water supply center. Let's hear more from a correspondent, Irene.
The first phase of the Riparians campaign was carried out for 20 days, where they launched a massive cleanup of two drains at two of Aizawl's localities. Speaking at the flagging off ceremony of the second phase of the Save the Riparian project, the president of Khadlayang Mizo Association, YMA, Lal Rimoya, said, "This project will be a wake-up call for residents of the locality when dirt and garbage are cleaned out." He said it is important that they take this as a challenge, and the locality of Khadla will continue their support to this project. It is worth mentioning that Save the Riparian project was launched on March 26 in Aizawl to clean the gorges of the city that adjoins the River Thlong. The first phase had sponsorship from government departments like Urban Development and Poverty Alleviation, Aizawl Municipal Corporation and Public Health Engineering, and was supported by several volunteers as well as financial support. Save the Riparian expressed their gratitude to all those who have supported their efforts. They also stated that poor sanitation and uncontrolled dumping of waste by people in gorges make their work less fruitful than expected. They also appeal to the public to stop dumping garbages in the gorges, as these are extremely harmful for the health of the public. Furthermore, Save the Riparian appeals to the government to set up garbage traps to prevent garbage from flowing into the river, which is the main source of the water supply to the city. For Parikram,
और जैसा कि अभी अभिषेक जिक्र कर रहे थे कि पूरे देश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, गुजरात में भी इस बार लगातार बढ़ रहे गर्मी के पारे से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भीषण गर्मी का व्यापक असर पूरे राज्य के जनजीवन के साथ साथ वन्य जीवन पर भी पड़ रहा है। वन क्षेत्र में नदियां और नाले सूख जाने से जानवर बेसहारा हो गए हैं। इस गर्मी की स्थिति में जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा वन्यजीव प्रबंधन के तहत कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
पूरे गुजरात में इस साल गर्मी और लू से नागरिक त्राही त्राही कर रहे हैं। जंगल क्षेत्र में रहते वन्य प्राणी भी गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी में जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए वन विभाग ने अलग अलग जंगल क्षेत्र में कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया है। कच्छ जिले में वन विभाग ने मूक जानवरों और पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। पश्चिम कच्छ वन विभाग के उप वन संरक्षक गुयुराज सिंह झाला ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि वन क्षेत्र में पशु पक्षियों के लिए कृत्रिम वन तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। जहां पानी के कुदरती स्रोत खत्म हुए हैं, उस क्षेत्र में टैंकर द्वारा भी पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मी में डिहाइड्रेशन की वजह से पक्षी घायल होते नजर आते हैं। ऐसे पक्षियों को बचाने के लिए भी वन विभाग द्वारा मुहिम चलाई जा रही है।
वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी की बात करें तो कच्छ लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिच है। यहाँ पे चिंकारा, नीलगाय, लेपर्ड, वाइल्ड लाइफ, चैकन, इंडियन फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स, हाइना जैसे एनिमल्स है। इसके अलावा भी यहाँ कैरेकल जैसे बहुत ही रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स का भी आवास है। तो इस परिस्थिति में इतने बड़े भूभाग पे वन्य प्राणी को पानी का पूर्ण व्यवस्थापन हो, उसके लिए वन विभाग ने एक प्रयास किया हुआ है। हमारे जो भी फॉरेस्ट एरिया है और आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है, वहाँ पे हमने आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट्स बनाए हैं। हम वहाँ टैंकर से पानी डालते हैं और उसके अलावा हमने एज अ परमानेंट सॉल्यूशन बहुत सारी जगह पे सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क के तौर पे वन तालाब का भी निर्माण किया हुआ है।
चाहे शहरी हो या जंगली जानवर, गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए प्राकृतिक तत्वों की दया पर निर्भर होते हैं। ऐसे में वन विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। परिक्रमा के लिए अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, भुज।
In view of the Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile, giving details of date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. Bhadrak parliamentary constituency in Odisha is going for polls in the 7th and last phase of Lok Sabha elections on 1st of June. The seat has been a stronghold of the ruling Biju Janata Dal led by Chief Minister Naveen Patnaik for more than 2 decades, and the party has reposed faith on incumbent MP Manjulata Mondal and repeated a candidature to contest this prestigious seat against BJP's Abhimanyu Sethi, who lost this election in 2019 by a margin of over 29,000 votes. And Congress has roped in its senior leader Ananta Prasad Sethi to make the battleground of Bhadrak Lok Sabha constituency a triangular one. We have more from our correspondent Prakash Das.
Bhadrak Lok Sabha constituency has become a battle for prestige for the three major political parties, with heavyweight leaders from BJD, BJP and Congress in the fray in the election for most of the assembly seats. The Lok Sabha has been a strong foot of the ruling BJD in the state for more than 2 decades. In the 2019 elections, BJD candidate Manjulata Mandal won the seat and defeated Abhimanyu Sethi of the BJP. The BJD has repeated Manjulata Mandal in this election. The BJP has also repeated Abhimanyu Sethi. Congress has fielded a senior leader and former MP Ananta Prasad Sethi from the seat. The BJD is quite strongly entrenched in the Lok Sabha constituency, as the party had won 6 out of the 7 assembly segments in the 2019 elections. Several strong candidates have been renominated by the ruling BJD in the assembly elections being held simultaneously. They are expected to poll more votes for the party nominee in the Lok Sabha election. The constituency has assumed immense significance for the BJP also, as party state president Manmohan Samal has entered the fray from Chandwali assembly seat, which comes under Bhadrak Lok Sabha constituency. प्रकाश दास, आकाशवाणी न्यूज, भुवनेश्वर।
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम पंजाब के जालंधर संसदीय सीट की जानकारी दे रहे हैं। जालंधर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देश के प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल है। कुल 9 विधानसभा वाले इस लोकसभा क्षेत्र में 16,54,000 मतदाता हैं।
पंजाब के दुआबा क्षेत्र में पड़ने वाला जालंधर आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले वर्ष कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के अचानक निधन पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू को जीत मिली थी, जब वे कांग्रेस पार्टी से दल बदलकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार सुशील कुमार रिंकू भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मैदान में हैं। इधर चुनाव की बेला पर शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर आए पवन कुमार टीनू पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है, जबकि टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी से शिरोमणि अकाली दल में शामिल मोहिंदर सिंह केपी अब अकाली दल के उम्मीदवार हैं। बहुजन समाज पार्टी के बलविंदर कुमार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अनेक प्रमुख पार्टियों के कद्दावर उम्मीदवार दल बदल कर एक से दूसरी पार्टी में आए हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
In the 7th and final phase of Lok Sabha elections, voting will be held on 13 seats of Uttar Pradesh on June 1st. Mirzapur Lok Sabha seat, which is one of the important seats of Purvanchal, is also included in this. NDA's ally Apna Dal's Sonelal's Anupriya Patel has been winning this seat for the last 2 elections and is contesting as a NDA candidate for the 3rd time. And apart from him, 9 other candidates also trying their luck in the elections. Our correspondent Om Awasthi has filed this report.
Mirzapur Lok Sabha constituency holds an important place in religious tourism as well as in the electoral politics of India. In the elections held so far, on this parliamentary seat, Congress has won 7 times, Samajwadi Party 4 times, Bahujan Samaj Party twice, BJP twice, Apna Dal twice, Bharatiya Janata Sangh once, Janata Party once and Janata Dal once. The special thing about the seat is that no one has been able to become MP here for 3 consecutive times. Anupriya Patel of Apna Dal Sonedal, who has been winning this seat in the last 2 elections, is contesting for the 3rd time as an NDA candidate. Union Minister of State Anupriya Patel had defeated SP's Charitra Nisad in the 2019 parliamentary elections. In this election, she will face 3-time MLA and MP Ramesh Chand Bind, who left the BJP and joined SP. Bahujan Samaj Party has made Manish Tripathi its candidate, while Apna Dal Kamerawadi has fielded Daulat Singh Patel. Along with this, 6 other candidates are also in the electoral fray. Om Awasthi, Akashwani News, Lucknow.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
29th May is the birth anniversary of freedom fighter and journalist Kanhaiya Lal Mishra Prabhakar, who was born in Saharanpur in 1906. During his college days, Kanhaiya Lal left studies and jumped into the freedom struggle. He spent many years in jail. As the country got independence on 15th August 1947, Kanhaiya Lal started his newspaper titled Vikas the very same day.
Writing was not just a medium of entertainment for Kanhaiya Lal. He used to write for the moral development of the society.
Once Nehruji asked Prabhakar, "What are you doing nowadays?" To this, Prabhakar replied,
"Panditji, now our country is focused on constructing bigger and taller dams and buildings. Structures built of bricks and mortar are becoming taller than humans. There will come a time when the nation will need great leaders. I am busy writing literature that will help nurture leadership in the future."
Mishra published several books: Deep Jale, Shankh Baje, Mati Ho Gai Sona, Nai Peedhi, Nai Vichar are some of his notable works.
Kanhaiya Lal continued to work for the people of the country till his death in 1995.
We also remember freedom fighter Lok Ram Nayan Ram Sharma, who died on 29th of May 1933. A journalist by profession, Lok Ram used to write nationalistic articles, which were many times banned by the British authorities. He also participated in the Salt Satyagraha.
Lok Ram was born in 1890 in the Sindh province. He had a special interest in the Sanskrit language. Due to this interest, at the age of 15, he went to Varanasi with his friend Guru Das to study Sanskrit. While living in Varanasi, he was introduced to anti-Bengal partition agitators. By the time he reached Sindh back in 1907, he was full of nationalistic sentiments. In his hometown, he associated with prominent Sindhi leaders, Choitram Gidwani, Jairam Das and Daulat Ram. Lok Ram was instrumental in helping convene the Congress session in Karachi in 1931.
Lok Ram's writing strongly supported national aspirations. He formed a cultural organization called Ras Mandali. Then he started publishing Sindh Bhaskar, a letter in Devanagari script instead of Arabic script. After some time, its name was changed to Hindu. The British government imposed a ban on his letters and confiscated the press. Lok Ram Nayan Ram Sharma went to jail several times, due to which his health deteriorated and he became ill. He died on 29th of May 1933. We salute the great freedom fighter.
We also remember independence activist Somay Soren, a resident of Santhal Parganas, Jharkhand, who took active part in the Quit India movement of 1942. He was arrested for his anti-British activities and imprisoned in the Dumka jail. He died during imprisonment on the 29th of May, 1943. We salute the great martyr.
We also remember martyr Isa Muhammad, who took part in the First War of Independence in 1857. Muhammad was captured by the company's troops in the course of an engagement. He was sentenced to transportation for life on 29th of May, 1858. Muhammad was shot dead in 1859 while trying to escape from the detention.
In business news today, the benchmark indices Sensex and Nifty fell for the fourth day in a row amid negative cues from the global share markets. The BSE Sensex shed 688 points or 0.89% to close at 74,503. The NSE Nifty dropped 183 points or 0.8% to settle at 22,705. And moving on to some sports news, Serbian tennis star Novak Djokovic advanced to the second round of the French Open with straight sets victory in Paris last night. He began his French Open title defense with a solid win over Pierre-Hugues Herbert in his opening round match. And in arm wrestling, the Indian contingent has clinched a total of 7 medals, including 1 gold and 6 bronze at the Asian Championships 2024 in Tashkent, Uzbekistan.
और भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक सत्र में दो बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति होकर इतिहास रच दिया है। और खास बात यह अभिषेक कि ऐसे दिन खबर आई है जिस दिन माउंट एवरेस्ट दिवस भी है। और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती, या फिर है जन्मदिन।
अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
आवाज की ये बुलंदी और संवाद अदायगी का ये खास अंदाज हर हिंदुस्तानी सिनेमा प्रेमी के दिल में बसा हुआ है। मुगले आजम में इस तरह उन्होंने अकबर के किरदार को जिया कि आज भी अकबर का नाम आने पर लोगों के जहन में पृथ्वीराज कपूर की तस्वीर आती है। फिल्मों में अपने अभिनय से सम्मोहित करने वाले और रंगमंच को नई दिशा देने वाले भारतीय सिनेमा के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर को आज भी उनकी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के कारण याद किया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा में उन्होंने सहायक अभिनेता के तौर पर काम किया और 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर से वे कामयाबी के शिखर पर जा पहुंचे। मुगले आजम, हरिश्चंद्र तारामति, सिकंदर आजम, आसमान महल, तीन बहुरानियां जैसी फिल्मों के अलावा उन्होंने अपने बड़े बेटे राज कपूर के साथ फिल्म आवारा में काम किया। कल आज और कल में उन्होंने अपने परिवार की अगली दो पीढ़ियों राज कपूर और रणधीर कपूर के साथ अभिनय किया। 1972 में आज ही के दिन उनका देहांत हो गया। थिएटर उनका पहला प्यार था। 1943 में भारतीय जननाट्य संघ इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से वे एक थे और 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने अपनी खुद की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर शुरू की। करीब 16 वर्षों में पृथ्वी थिएटर ने 2000 से ज्यादा नाट्य प्रस्तुतियां दी। आज भी देश में रंगमंच की दुनिया में पृथ्वी थिएटर का अहम स्थान है। पृथ्वीराज कपूर को देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के के अलावा पद्म भूषण से भी नवाजा गया।
भारत रत्न चरण सिंह पास्ड अवे दिस डे इन 1987। चौधरी चरण सिंह वॉज एन इंडियन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट, सेक्युलर ह्यूमनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट An author who was a central figure among the rural community in India during the late 1970s and early 1980s, Singh was principally known for his land and agricultural reform initiatives. He briefly served as the fifth Prime Minister of India from July 1979 to August 1979, and Singh is widely regarded as a champion of farmers after his life, and he has been dedicated to advocating for the well-being and rights of farmers, and he was also the fifth Chief Minister of Uttar Pradesh.
आज मशहूर गीतकार योगेश की पुण्यतिथि है। अभिषेक, योगेश के लिखे गीत आज भी हमारे आसपास बिखरे हुए हैं और मौके बेमौके हम सब उन्हें सुनते गुनगुनाते रहते हैं। बारिश हो और रिमझिम गिरे सावन न सुने आप, या सनसेट देखकर जो गीत सबसे पहले याद आता है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। इसी तरह रजनीगंधा के फूलों को देखकर जो गीत आप अनायास ही गुनगुनाने लगते हैं, रजनीगंधा फूल तुम्हारे। तो आइए सुनते हैं योगेश के लिखे उस गीत को जिसने कोविड जैसे मुश्किल भरे दौर में भी बहुत से लोगों को संबल दिया।
उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम।
Melanie Jenin Brown was born on this day in 1975. She is an English singer-songwriter, television personality, an actress commonly known as Mel B or Melanie B. She rose to fame in the mid-1990s as a member of the pop group, girl group, the Spice Girls, and she was nicknamed the Scary Spice. Let's listen in to a hit track, I Want You Back.
LB, you know me. I'm the M-I-S-S-Y to the E. And I got many flows from overseas. Well, how can you beep beep with no keys? I got spice, I'm tight with my flows. And all my flows been known to throw blow. Well,
आज मशहूर शास्त्रीय गायिका हीराबाई बरोटकर की जयंती है। उस दौर में जब महिलाओं के लिए संगीत सीखना अच्छा नहीं माना जाता था, तब हीराबाई भारत की पहली महिला गायिका बनी जिन्होंने आम जनता के लिए स्टेज पर गाया और जिन्हें लोग टिकट खरीदकर सुनने भी गए। वे ख्याल और ठुमरी जैसी शैलियों से लेकर भजन, नाट्य संगीत और मराठी लोकगीत भी गाती थीं। अपनी छोटी बहन सरस्वती राणे के साथ शास्त्रीय गायन की जुगलबंदी प्रस्तुत करने वाली वे देश की पहली महिला गायिका बनी और 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजाद हुआ, उन्हें लाल किले पर खासतौर पर आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। 1955 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी और 1970 में पद्म भूषण से नवाजा गया।
Da 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 da
Mudita, as we were presenting this program, it's been drizzling outside from the sudden change of weather from the hot weather outside to suddenly it's drizzling. And so with that, it's time to wind up this edition of Parikrama. Thank you so much for being with us. Till the next time, this is Mudita and me, Abhishek Mukhopadhyay, signing off. Bye. Namaskar. And Namaskar.